समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, अ हार्ट फेल्ट हेलो। वेलकम अलोंग लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता सिंह। एंड हियर वी हैव फॉर यू, एज आकर्षिता ऑलरेडी टोल्ड यू, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ लेआउट हियर। सिलेक्शन ऑफ न्यूज फर्स्ट, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट नॉट जस्ट वन बट two very important topics of importance today. We also have reports, tributes, and because this is a parikrama, we'll go on a parikrama of different states. Specifically, we have chosen reports and capsules for you listeners, and all of this we'll give you over the next 30 minutes. Let's get started with the headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की।
Indian Air Force says it has successfully executed its assigned tasks in Operation Sindoor with precision.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया।
Nation remembers contribution of scientists, engineers and technicians on National Technology Day today.
मौसम विभाग ने इस साल देश में सामान्य से बेहतर मॉनसून का अनुमान लगाया।
And in Women's Tri-Nation ODI series, the summit clash between India and host Sri Lanka underway in Colombo. Well, yes, it's time for our segment Dateline India, and we'll be taking a look at the developments which take place at national or the global level. And first, we'll talk about National Technology Day. It is today. Well, India celebrates National Technology Day annually on May 11, and this is to commemorate the successful nuclear test at Pokhran, India 1998, and also mark the significant achievements in science and technology sector particularly, and emphasizing its pivotal role in solidifying the nation's position as a global leader in technological innovation. Technological innovation is a very important aspect that a nation has to think about every time while formulating policies and stuff like that. Also, every year, a new theme is announced to inspire young minds to explore technology and learn from India's remarkable scientific achievements. Well, the theme, let me tell you listeners about it now. This year's National Technology Day is Yantra, Yugantar for Advancing New Technology, Research and Acceleration. How wonderful.
जी हाँ, हमारे वैज्ञानिकों ने आज ही के दिन पोखरण परमाणु परीक्षण पर समर्थ भारत सक्षम भारत के संकल्प को सिद्धि की ओर नया कदम बढ़ाते हुए हमारी वैज्ञानिक चेतना को वैश्विक पटल पर स्थापित किया था और इस साल का विषय है यंत्र। यंत्र शब्द भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से समाया हुआ है। ये न केवल यांत्रिक सरलता का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति, प्रणालियों, तालमेल और मापनीय समाधानों का भी प्रतिनिधित्व करता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे का दिन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के महत्व को दर्शाता है। ये दिन युवाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। वहीं ये दिन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने, जिसमें अग्नि मिसाइल लॉन्च करना, पोखरण परमाणु परीक्षण और मंगलयान मिशन की सफलता शामिल है।
Well, yes, National Technology Day, listeners, presents an ideal opportunity to recognize the invaluable contribution which is by innovators, by scientists and also engineers as catalysts for growth. They add to the growth of the nation as a whole. National Technology Day, it holds great significance for a developing nation such as ours and those who are committed to advancing science and technology which are pivotal in driving the country's transformation, and this observance is a tribute to honor and recognize the contributions of innovators, of scientists, and of the engineers, even technicians as a whole.
तो इसी के साथ ही नए भारत के निर्माण में रत सभी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
फ्रॉम अस फ्रॉम मी अंकर्षिता हियर
जी
नेशनल टेक्नोलॉजी डे नाउ मूविंग ऑन लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंटरनेशनल मदर्स डे वेल टुडे इज इंटरनेशनल मदर्स डे इट इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ स्पेशल ओकेजन व्हिच आई शुड मेंशन टू ऑनर मदर्स एंड मैटरनल फिगर्स for their love, for their sacrifices, and for contributions to their own families and even to the societies as a whole. Their presence is really necessary and very, very important. Plays a pivotal role, I should say. And today in India, a silent resilience pulses through the hearts of mothers whose children are called to duty to the nation, especially at the border amid the conflict. Well, as tensions between India and Pakistan, they escalate. These women, they carry a burden known and understood only by those who have kissed their sons and daughters a goodbye. Unsure if they will get to see them again. Well, that fills my heart with emotions, lots of emotions. But I could or you could just feel it on the upper surface. But what they deal with is to them. Unique to them, I should say. Despite the sleepless nights and the haunting fear, their eyes do not waver. They are strong, not because they do not feel the weight of war, but because they carry it with grace and faith in their children and above all in their country. Country first.
Itni si baat hawaon ko bataye rakhna roshni hogi, chiragon ko jalaye rakhna. Lahu dekar ki hai jiski hifazat humne ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना हिमालय की पहाड़ियों और पंजाब के हरे भरे मैदानों से लेकर असम की चाय के बागानों तक भारत की माएं हिम्मत नहीं हारती वे अपने आंसू पोंछती हैं और अपने बेटों के जिंदा वापस आने का इंतजार करती हैं जब कोई सैनिक देश की सीमा पर तैनात होता है तो उसका पूरा परिवार एक अनकहे युद्ध से गुजरता है आसान नहीं होता अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर भेजना माएं त्याग साहस और देशभक्ति की सर्वोच्च मिसाल होती हैं ये माएं हमें सिखाती हैं कि असली देशभक्ति सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं बल्कि त्याग और सहनशीलता में भी होती है उन सभी माताओं को नमन जिनकी ममता के कारण हम सुरक्षित अपने घरों में अपने राष्ट्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं
मेरी का डर तू दुआओं का है घर मेरी माँ प्यारी माँ ओ माँ मेरी
मदर्स Well, they personify patriotism that doesn't scream slogans but whispers in sleepless nights spent sobbing into their pillows after they brave goodbyes to ensure that their sons and their daughters, they don't bear the burden of their fear which they are facing. And when you ask them, how do you do it? You know how they will answer? Because we are mothers.
इन माओं ने देश को अपना सबसे अनमोल तोहफा दिया है उनके सपूत सपूत जो राइफलें उठाते हैं बेटियां जो आसमान में लड़ाकू विमान उड़ाती हैं और माएं जो युद्ध की भयावहता को जानते हुए भी डर के अभाव से नहीं बल्कि प्रेम गर्व और कर्तव्य से साहस के साथ अपने बच्चों को सरहदों पर भेजती हैं। शगुन, ये कितनी बड़ी बात है। एक माँ होती है जो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर कोई विपदा, कोई आपदा आ जाए, वो हमें प्रोटेक्ट करती है, और जो हमें सबसे प्रोटेक्ट करती है, सबसे हमारी सुरक्षा करती है, वो जब अपने बेटे को सरहद पर भेजती होगी तो किस तरह का उसके अंदर जो है उठा पतक चलती होगी, और किस तरीके की प्रेम, गर्व और कर्तव्य की भावना होती होगी उसके अंदर कि वो अपने बेटे को सरहद पर भेजती है। तो आज उन सभी माओं को याद करने का दिन है, और उनको बहुत ही हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं उन माओं के कारण, जिनके साहस, अदम्य साहस और वीरता के कारण उनके जो बच्चे हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं। तो आज
बिकॉज ऑफ देम, यू नो, वी कैन सिट हियर, सिट अराउंड हियर इन पीस, एंड बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स एंड देयर सैक्रिफाइस एंड देयर वैलर एंड देयर ऑल द थिंग्स दैट दे डू फॉर अस, दे आर लाइक, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ इट। एंड मदर्स, वेल, आर सोल्जर्स, दे स्टैंड गार्ड फॉर अस, एंड द मदर्स हु सेंड देयर डॉटर्स एंड सन्स इवेंचुअली, दे आर द वंस हु गो थ्रू द फियर ऑफ सेंडिंग देयर ओन चिल्ड्रन इन दिस स्पेस। And that's why I think this is the time, you know, to think about all the mothers on this particular Mother's Day. We salute the heroes who serve not just their mothers, but the greatest mother of all, India.
जी, हम उनको भी नमन करते हैं। और आइए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी साल 1908 में। अन्ना जावर्स ने अपनी पहली बार अपनी माँ एन रीव्स जार्विस की याद में इसको मनाया था।
जी,
दरअसल अन्ना जार्विस की माँ एक शांति कार्यकर्ता थी और अमरीकी गृह युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल की थी उन्होंने। और जार्विस ने अपनी माँ और अन्य माताओं के योगदान के लिए एक दिन की मांग की थी, जिसके 6 साल के बाद यानी 1914 में अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और तभी से इस दिन को हम मना रहे हैं।
Well, Akarshita, also I should add over here that a mother's strength is measured not just by the love that she gives, but by the courage with which she lets go, right? So I think I should also add here that Mother's Day, it cannot just be a celebration. Well, it is a reminder, of course, of the pivotal role that mothers play in shaping lives and nurturing generations, the generations to come, the future generations. Their love, their selfless love, guidance and sacrifices, they form the foundation of families and also the communities as a whole.
और अगर हम दूसरे परिपेक्ष की बात करें तो धरती जो हमारी माँ है और राष्ट्र माता जो मतलब एक तरीके से हम अपने तिरंगे को इतना सहेजते हैं, अपने देश की सुरक्षा करते हैं, तो वो भी हमारी माँ ही है एक तरीके से, और वो हमारी रक्षा कर रही है, सरहदों पर भी रक्षा कर रही है। और देख सकते हैं कि एक तरीके से एक माँ ही के अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि वो इतना दंभ उठा सके और अपने बच्चों को जो है वो ज्ञान, वो परंपरा, वो विचार,
दे ओनली क्रिएट द ब्रेव हार्ट्स। डेफिनेटली, यू आर वेरी राइट अबाउट दिस। एंड नॉट जस्ट आर बायोलॉजिकल मदर्स, आई शुड ऑल्सो एड ग्रैंड मदर्स, स्टेप मदर्स, इवन अडॉप्टिव मदर्स एंड ऑल द मेटर्नल फिगर्स एज अ होल, दे मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। सो अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
गवर्नमेंट हैज सेड दैट सेवरल कॉम्बैट गेमिंग वीडियोज आर बीइंग डिसेप्टिवली सर्कुलेटेड एज रियल फुटेजेस ऑफ रीसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्ज्ड पीपल नॉट टू फॉल प्रे टू सच प्रोपेगेंडा पोस्ट्स। द फैक्ट चेक यूनिट ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सेड combat gaming footages are flooding social media where video game scenes being deceptively presented as actual combat and digital combat clips are being misrepresented as real footage. It urged people to stay vigilant. We have a report on this. Pay attention.
A message is also circulating on WhatsApp in the name of Office of the Defense Minister of India, giving instructions for civil preparedness in view of the India-Pakistan situation. PIB said this message is fake. It said Government of India has issued no such instructions. Listeners, as Pakistan has resorting to spreading false propaganda on social media, it is crucial to scrutinize every piece of information carefully in this critical time. If you encounter dubious content, especially concerning the Indian Armed Forces or any information related to the ongoing situation, they must report it to PIB Fact Check. They can also share such content on WhatsApp number 8799711259 Anupamish, Delhi.
बिहार ने शिशु और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार ने मातृ मृत्यु दर यानी MMR में कमी लाकर सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में भी बड़ी कमी आई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 के लिए ये आंकड़े सिस्टम रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS के तहत जारी किए हैं। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये आंकड़े वर्ष 2021 के लिए जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख पर MMR में यह संख्या घटकर 100 हो गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर में प्रति 10,000 पर यह आंकड़ा घटकर 27 हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह राज्य में स्वास्थ्य मानकों में हुए बड़े सुधारों का परिचायक है।
तो SRS के के अनुसार 2005 में 374 था, 2021 में यह घटके 118 पर आ गया और ये जो SRS का रिपोर्ट जारी हुआ है ये संख्या 118 से घटके आज 100 पे आ गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, ये 18 अंकों का जो गिरावट यह बहुत बड़ा अंतर है। और राष्ट्रीय स्तर जो रिपोर्ट जारी हुआ है पूरा राष्ट्र का औसत 93 है, तो देश का औसत 93 है, हम 100 पे, हमको और सुधार करना है। लेकिन जिस तेज गति से बिहार ने सुधार किया है यह सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और हमने ये 100 का आंकड़ा प्राप्त किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके तहत दुनिया के विभिन्न मानकों को ठीक करने के लिए 2030 तक कुछ लक्ष्य तय किए गए। उन्हीं लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी तय है दुनिया के स्तर पे कि मातृ मृत्यु दर को हम 70 पे लाएंगे 2030 तक। तो आज जो 21 का आंकड़ा है वो 21 का आंकड़ा है कि हम पहुंच गए हैं 100 पे और उसके 15 साल पहले हम 374 पे थे, मतलब 274 अंक की कमी हुई है 15 साल। स्वास्थ्य सेवाओं के जो विभिन्न मानक होते हैं उन मानकों में दो मानक बहुत महत्व रखता है। यदि किसी राज्य की मातृ मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है, इसका मतलब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है, और वो यदि खराब है तो इसका मतलब है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इन्हीं दो मानकों में बिहार ने बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है।
स्वास्थ्य के संकेतक के तौर पर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बड़ी कमी बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की ओर इशारा करते हैं। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
Well, the Haryana government is continuously promoting green manure in the state. The government has announced a major scheme aimed at freeing farmers from dependency on chemical fertilizers. Dependence on chemical fertilizers. We have a report.
हरियाणा सरकार लगातार राज्य में हरित खाद को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने किसानों को रासायनिक खाद पर निर्भरता से मुक्त करने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना की घोषणा की है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि योजना के मुताबिक अब जो किसान अपनी जमीन पर ढेंचा हरित खाद के रूप में उगाएंगे उन्हें सरकार की ओर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि ढेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ढेंचा एक प्राकृतिक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, नमी बनाए रखने और उत्पादन लागत घटाने में सहायक है। ये योजना पहली बार प्रदेश भर में लागू की जा रही है जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा। वास्तव में ढेंचा एक फलीदार फसल है जिसे कटाई से पहले मिट्टी में जोतकर जैविक खाद तैयार की जाती है। ये फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है क्योंकि ये नाइट्रोजन करती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मिट्टी की संरचना बेहतर होती है और लंबे समय तक उत्पादकता बनी रहती है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, Akarshita, beginning with Khelo India Youth Games. Well, in Khelo India Youth Games, Maharashtra continue to hold top position in the medals tally with a haul of 74 medals, including 27 gold and 22 silver. Karnataka are at the second position with 39 medals, including 14 gold and 19 silver. And Rajasthan have maintained their third position in the medals tally. Rajasthan have won 23 medals, including 11 gold and 4 silver. And today is the 8th day of the games and several new events like boxing, wrestling, yogasan and fencing are being held at different venues. After Gatka, the second martial art game, Kalaripayattu, also started today.
श्रीलंका में कोलंबो में खेले जा रहे महिलाओं के त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 343 रन का लक्ष्य दिया है. जवाब में श्रीलंका ने 34 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन बना लिए हैं. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 342 रन बनाए. भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने शतक लगाते हुए 101 गेंदों में 116 रन बनाकर विशाल स्कोर खड़ा किया. वहीं हरलीन देओल ने 47 रन और जेमिमा रेड्रिक्स ने 44 रनों की पारी खेली. श्रीलंका की ओर से मालकी मदारा, देवमी विहंगा और सुगंधिका कुमारी ने 2-2 विकेट लिए.
And now we have news from defense sector.
In today's episode, we remember freedom fighter Asif Ali, who was born on the...
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है. आज लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है. उन्होंने कहा कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो सीमा पार के क्षेत्र आतंकवादियों और उनकी आकाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे. श्री सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया था और रिहायशी इलाकों को कतई लक्ष्य नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर भी हमले किए. रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है.
Well, adding to that, the defense minister also said the inauguration of BrahMos integration and testing facility will help in further strengthening India's defense prowess. Defense minister said the inauguration of this facility is also important because today is National Technology Day, as we were also talking about it. He said on this day in 1998, under the leadership of Atal Bihari Vajpayee, the scientists showed India's strength to the world by conducting nuclear tests in Pokhran. Mr. Singh said that the test was the result of the tireless efforts of the scientists, engineers, defense personnel and many other stakeholders. He said BrahMos is one of the world's fastest supersonic cruise missiles. Mr. Singh said it is not just a weapon, but it is a message in itself. He said it is a message of the strength of the Indian armed forces, a message of the deterrence towards the enemy and a message of the commitment to safeguarding the borders.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन, और याद करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी. इसी क्रम में आइए चलते हैं आजादी के सफर पर.
In today's episode, we remember freedom fighter Asif Ali, who was born on the 11th of May 1888 at Bijnor, Uttar Pradesh. Husband of famous freedom fighter Aruna Asif Ali, he was the first Indian ambassador to the United States and also served as the governor of Odisha.
Asif Ali gave up his practice of law during the non-cooperation movement in the early 1920s and returned to India from England. He took part in the nationalist movement and used his legal acumen to help nationalist leaders in courtrooms. Revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were defended by Asif Ali.
Asif Ali was imprisoned during the Quit India movement in 1942 and was detained in Ahmednagar Fort Jail. After his release, he served as the Minister for Railways in the interim government formed in August 1946. In that capacity, one of his first actions was the elimination supply of potable water
on railway platforms like Hindupani and Muslimpani. Both in his personal and political life, Ali sought to discard religious differences and promote harmony.
Ali was regarded as an important statesman. He was appointed as the governor of Odisha twice in 1948 and 1951. He played an important diplomatic role post-independence and served as the first Indian ambassador to the United States of America. Subsequently, he was appointed as the ambassador to Switzerland. Asif Ali passed away during his tenure as the ambassador to Switzerland in Bern on the 2nd of April 1953. We salute the great Indian.
We also remember revolutionary freedom fighter Basant Kumar Biswas, who was martyred on the 11th of May 1915. He was inspired by the great transnational patriot Rash Bihari Bose.
Biswas was born in 1892 in Nadia district of West Bengal. As a student, he took active part in the Swadeshi agitation. In 1907, he left his studies and took up a job in 1910 at a Swadeshi cloth store in Uttarpara, but left it also only to join the national movement. Biswas joined a revolutionary group and used to provide bombs in northern India. Biswas accompanied Rash Bihari Bose to Dehradun in the disguise of his servant Haridas. He reached Lahore along with Rash Bihari in October 1912.
Biswas took part in a plot to throw a bomb on Lord Harding on the 23rd of December 1912 when he was passing through Chandni Chowk, Delhi, in a state procession marking the inauguration of Delhi as a capital of India. After the failed attempt at killing the Viceroy, Biswas left Delhi and went to Bengal, from where he was arrested on the 26th of February 1914. He was charged with conspiracy to kill Viceroy Harding. He was executed on the 11th of May 1915. We salute the great martyr.
We also remember revolutionary freedom fighter Manindranath Ukil, who died on the 11th of May 1936. Born in 1911 in Dhaka, now in Bangladesh, Manindranath was a member of the Jugantar Party and took active part in nationalist movements against British rule. He was arrested for his revolutionary activities on the 26th of September 1930 and died in internment on the 11th of May 1936. We salute this great son of the soil.
आज भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की जयंती है. उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था. तत्कालीन समय में वो दौर था जब कलाकार सिर्फ एक फॉर्म से ही सीखते थे. मृणालिनी साराभाई ने भी नृत्य की अलग अलग शैलियों को बारीकी से सीखा. उन्होंने अमूबी सिंह से मणिपुरी नृत्य सीखा, कुंजू कुरूप से कथकली सीखा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लय और नुथुकुमार पिल्लय से भरतनाट्यम सीखा. शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया.
Well, yes, classical dancer, choreographer and also an instructor. Well, she's known for many things, for being an excellent dancer who trained thousands in Bharatanatyam and Kathakali, an activist also and a pioneer in promotion of Indian classical dances. Let's hear an excerpt of her interview where she is talking about her passion.
Dance, of course, is my main, and movement, I think, I've always liked to express through movement, which is through classical dance and also creative work. But I also write a lot and read a lot. My favorite thing is to buy books and read and enjoy it so much. I love poetry. So there's so many lands.
आज भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक सागर सरहदी की जयंती है. उन्होंने कभी कभी चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी. एक नाटक प्रेमी होने के साथ ही उन्होंने फिल्मों के संवाद, लेखन और निर्देशन भी किया. स्मिता पाटिल की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बाजार की न केवल सागर सरहदी ने कहानी लिखी बल्कि उसके निर्माता निर्देशक भी वही थे. सागर सरहदी ने रंगमंच की दुनिया में फारूक शेख और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों को मौका दिया. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।